और आज हमारे साथ पोलन एलर्जी के बारे में जानकारी देने के लिए जुड़ी हैं डॉक्टर शशि साहू। आपका बहुत बहुत स्वागत है डॉक्टर SBS हिंदी पर। कैसी हैं आप?
मैं बिल्कुल अच्छी हूँ प्रियंका, थैंक यू सो मच मुझे यहाँ पे बुलाने के लिए और पोलन के बारे में डिस्कस करने के लिए।
क्या ऑस्ट्रेलिया में पोलन एलर्जी सामान्य है, कॉमन है?
बहुत ज़्यादा कॉमन है एक्चुअली। यहाँ पे पॉलन्स जो हैं खासकर जैसे स्प्रिंग सीजन में पॉलन बहुत होते हैं, तो ऑस्ट्रेलिया में जो ग्रास और फ्लावर्स से एलर्जी है वो बहुत ज़्यादा है एक्चुअली। यहाँ पे ऑस्ट्रेलिया में एलर्जीज और पॉलन्स के इश्यूज बहुत ज़्यादा हैं।
तो पॉलन एलर्जी का पीक सीजन कब होता है? स्प्रिंग में होता है या फिर विंटर में होता है?
स्प्रिंग में जब फ्लावर्स खिलना शुरू होते हैं, क्योंकि पॉलन्स जो है वो फ्लावर्स से आते हैं जनरली, तो फ्लावर्स से आ सकते हैं, ग्रासेस से आ सकते हैं और ट्रीज से आते हैं, तो जनरली स्प्रिंग सबसे हाई पॉलन सीजन होता है हमारा।
तो पॉलन एलर्जी के प्रकार होते हैं क्या? होते हैं तो कौन से होते हैं?
देखिए इसके प्रकार नहीं होते हैं, लेकिन ये इसकी सीवियरिटी होती है कि कभी कभी ये बहुत ज्यादा सीवियर होते हैं, तो किसी किसी में ये माइल्ड होते हैं, किसी में मॉडरेट और किसी में सीवियर हो सकते हैं। तो जनरली जनरली इनकी सीवियरिटी पे डिपेंड करता है कि ये कैसे हैं।
हर साल तकरीबन कितने लोग इससे प्रभावित होते हैं?
देखिए नंबर्स तो मेरे पास नहीं है अभी, लेकिन ऑस्ट्रेलिया में ये बहुत ही कॉमन है। जनरली अगर आप मुझसे पूछे हमारे पेशेंट्स के हिसाब से, तो हर चौथा पेशेंट एक्चुअली एलर्जी से सफर कर रहा है।
पोलन एलर्जी की जोखिम किसी विशिष्ट उम्र के लोगों के लिए ज्यादा होती है?
ये किसी में भी हो सकता है, बच्चों में भी हो सकता है, एडल्ट्स में भी हो सकता है, बूढ़ों में भी हो सकता है। लेकिन जिन लोगों को एलर्जी की टेंडेंसी ज्यादा होती है, जैसे एस्थमेटिक्स वगैरह हो गए, उनमें ये थोड़ा ज्यादा होता है, इसका इफेक्ट ज्यादा होता है।
पोलन एलर्जी के प्रमुख लक्षण कौन से हैं?
इसके प्रमुख जो लक्षण है वो है रनी नोज होना, आंखों में इच होना, जैसे खुजली सी होती है, आपके नाक में खुजली सी होती है, आंखों में हो सकती है, स्नीजिंग है, और आंखों से पानी आना, और आपके मुंह के ऊपर थ्रोट में भी बहुत इचीनेस होती है, तो ये सारे इसके मेन सिम्टम्स हैं।
तो क्या इसके गंभीर परिणाम भी देखने को मिलते हैं?
वैसे तो ये मुख्यतः इसके माइल्ड सिम्टम्स होते हैं, लेकिन हाँ ये परेशान बहुत कर सकता है लोगों को कि उनकी नोज ब्लॉक हो जाती है, बार बार उनके उनकी आंखों से पानी आता है, स्नीजिंग होती है, लेकिन कभी कभी इसके बहुत सीरियस इफेक्ट्स भी हो सकते हैं, जैसे कभी कभी लोगों को एनाफाइलेक्सिस जैसा भी हो सकता है, जिसमें कि जान का खतरा भी होता है, और खासकर जब कभी थंडर स्टॉर्म्स वगैरह होते हैं तो उस टाइम पे पॉलन, क्योंकि छोटे छोटे टुकड़े हो जाते हैं उसके थंडर स्टॉर्म्स की वजह से, तो उस टाइम पे अगर पॉलन कई लोग अगर इनहेल करते हैं तो उनको काफी सीरियस, अगर आपने बीच में न्यूज वगैरह में सुना होगा कि उस टाइम पे लोगों को एस्मा का अटैक बहुत ज्यादा पड़ रहा है, तो अगर एस्मा का सीरियस अटैक पड़ गया तो वो जानलेवा भी हो सकता है। तो इन सब चीजों को हम लोग ध्यान में जनरली रखते हैं कि वैसे तो ये माइल्ड है लेकिन सीरियस भी हो सकता है।
बच्चों में इसका प्रभाव किस तरह से देखा जाता है?
देखिए बच्चों में भी वही सिम्टम्स होते हैं जो बड़ों में होते हैं, तो उनको जैसे रनी नोज, इची आईज, ब्लॉक नोज, स्नीजिंग हो गया, कॉफिंग हो गया, और एस्मा के अटैक्स इनकी वजह से बढ़ सकते हैं। तो बच्चों में भी यही सारे सिम्टम्स होते हैं जो आपके एडल्ट और ओल्डर एज ग्रुप लोगों में होते हैं। ये लाइफ में कभी भी हो सकता है, किसी भी एज में हो सकता है, ये जरूरी नहीं है कि अगर आपको कभी नहीं हुआ हो तो ये नहीं होगा, ऐसा नहीं है।
तो प्राथमिक उपायों के तौर पर कौन से कदम हम उठा सकते हैं?
देखिए जो मेन चीजें हैं, पहली बात तो उसको अवॉइड करना, कि अगर हम पोलन्स को अवॉइड कर सकते हैं, जो कि बहुत मुश्किल है क्योंकि वो हवा में है, तो हम लोग बोलते हैं क्योंकि सुबह सुबह पोलन बहुत ज्यादा होते हैं, क्योंकि फूल खिलते हैं तो फूलों में से आपका पोलन निकलता है, और तो इसलिए हम लोग बोलते हैं कि सुबह सुबह अगर हम उसको अवॉइड कर सकते हैं, तो अगर लोग घरों के अंदर रहें तो उसको आप उसको अवॉइड कर सकते हैं। बाकी जो है अपने घर की खिड़कियों को बंद रखें ताकि पॉलन अंदर ना आ सके। कार में जब ट्रेवल करते हैं तो कार के शीशे बंद रखें। जिन लोगों को बहुत ज्यादा तकलीफें हैं वो बहुत पोलन वाली जगहों में ना जाएं या फिर मास्क पहने। तो ये सारी बेसिकली मेन चीज ये है कि उसको आप पहले तो अवॉइड करें। अवॉइड नहीं कर सकते, मान लीजिए अटैक हो रहा है, तो फिर उसको उसका इलाज करें। जो दवाइयां हैं, जो एंटी हिस्टामिन है, जो कि जो इनके इलाज के लिए हम लोग यूज करते हैं, वो हम लोग एडवाइस करते हैं। जैसे आपकी सेट्रिजीन हो गई, और क्लैरेटाइन है, तो जितनी भी एंटी हिस्टामिन एंटी एलर्जी वाली दवाइयां हैं वो हम लोग देते हैं। और इसके अलावा नेजल स्प्रे भी होता है जो आप नोज के अंदर स्प्रे कर सकते हैं। और इसके अलावा अगर किसी को बहुत ज्यादा प्रॉब्लम्स है तो फिर उनको हम एलर्जी स्पेशलिस्ट के पास भी भेज सकते हैं। वो उनकी स्पेसिफिक एलर्जी टेस्टिंग करते हैं और उसके बाद एक लंबा प्रोसेस है डिसेंसिटाइजेशन का, वो भी कर सकते हैं।
अच्छा, आखिरी प्रश्न मैं पूछना चाहूंगी कि गवर्नमेंट या स्वास्थ्य विभाग की ओर से कुछ उपाय योजना इसके रोकथाम के लिए होती है?
बिल्कुल होती है। देखिए, बहुत सारे एजुकेशनल इन्फॉर्मेशन है वेबसाइट्स पे। जब कभी पॉलन बहुत एक्चुअली एक पॉलन का वो भी है, आप वेबसाइट्स पे देख सकते हैं, तो वहां पे बताते हैं कि आपके हवा में पॉलन कितना है। तो उससे कैसा है कि आप पता कर सकते हैं कि अगर आज पॉलन ज्यादा है तो बाहर कम जाएं। और उसका नाम है सिडनी पॉलन। तो अगर आप चेक करेंगे ऑनलाइन तो आप वो वहां पे वो उसका गेज दिया हुआ है और आप चेक कर सकते हैं कि हाई है या लो है। तो गवर्नमेंट जनरली वो बताती है। इसके अलावा एजुकेशनल बहुत सारे प्लेटफॉर्म्स हैं जहाँ पे बताते हैं कि आपको क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए। हाँ जी, बट बेसिकली यही चीजें हैं।
शशि जी, आज आपने हमारे साथ बातचीत की, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।
आपका भी बहुत धन्यवाद। थैंक यू प्रियंका जी, मुझे अवसर दिया यहाँ आके आप लोगों से ये बात करने का और डिस्कस करने का। और आई होप कि ये इन्फॉर्मेशन हेल्पफुल हो। थैंक यू वेरी मच।
आपको बता दें कि इस अंश में दी गई जानकारी सामान्य है और विशिष्ट सलाह नहीं है। यदि आप अपनी स्थिति से संबंधित सटीक जानकारी चाहते हैं, तो आप अपने जनरल प्रैक्टिशनर डॉक्टर से संपर्क करें।